प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिधर धारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज नरंजन यमुना धीरावन श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद, इनका शीर्षक है राजा ययाति को मुक्ति लाभ, श्लोक संख्या नंबर 8। कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। तम दुर्हतम सुहृद्रूपं कामिनां क्षणं सुहृदं इन्द्रिया आरामं उत्सृज्य स्वामिनं दुखिता जयु। तं दुर्हतं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणं सुहृदं कामिनं क्षणं सुहृदं इन्द्रियारामम् उत्सृज्य स्वामिनं दुःखितायु तं दुर्हतं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसहुरथम् इन्द्रियारामम् उच्छ्रित्य स्वामिनं दुःखितायु। तं दुर्हतं सहुररूपम् तं दुर्हतं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसहुरथं इन्द्रियारामम् उच्छ्रिज्य स्वामिनं दुःखितायु माता जी तम उस बकरे को दुर्दम अत्यंत क्रूर हृदय सहृद रूपम मित्र बनाने वाले कामिनम अत्यंत कामी क्षण सहृदम क्षण भर की मित्रता इंद्रियारामम केवल इंद्रिय तृप्ति या केवल इंद्रिय तृप्ति या विलासित में रुचि रखने वाला उत्सृज्य छोड़कर स्वामिनम अपने इस पति को या अपने पूर्व पालक को दुखीता अत्यंत दुखी ययो वही चली गई। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अन्य बकरी के साथ अपने पिता के इस आचरण के दुखी बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए मित्र है अथवा अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वामी नाम शब्द महत्वपूर्ण है। स्वामी का अर्थ है रखवाली करने वाला अथवा पति। देवयानी का पालन विवाह के पूर्व शुक्राचार्य द्वारा हो रहा था और विवाह के बाद ययाति द्वारा, किंतु यह पर स्वामीनम शब्द बताता है कि देवयानी के अपने पति ययाति का संरक्षण त्याग दिया और अपने पहले वाले रक्षक शुक्राचार्य के यहाँ लौट गई। वैदिक सभ्यता के संतुष्टि है, वैदिक सभ्यता की संस्तुति है कि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे, बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जाती है, युवावस्था में उसके पति द्वारा और बुढ़ापे में उनके पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ओम अज्ञानेन तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयीयं ददापि स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री उदपत कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीव साद्वैतम साद्वैतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रिशुवानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पद्रुव्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इनके पहले एक श्लोक है जिनका तात्पर्य नहीं है तो हम केवल अनुवाद देख लेते हैं। तम एव प्रत्यम्या रमम्नम आज अन्यया विलोक्य कूप संविक्रन न अमृतत वस्त कर्म। अनुवाद, जब उस बकरी ने जो कुआ में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं पाई। तो यहां पर हम पिछले क्लास में हम सुन रहे कि किस प्रकार ययाति महाराज अपने दुखों को व्यक्त करते हुए वह अपनी गलती के पछतावों को प्रकट करते हुए वो बता रहे हैं कि किस प्रकार मेरी ऐसी दुर्गति हो गई। तो उन्होंने अपनी कहानी को एक बकरा बकरी के साथ तुलना किया। तो एक तरह से ययाति महाराज वो बकरे की कहानी बताते हुए वो स्वयं के विषय में बता रहे और साथ साथ में हम लोगों को शिक्षा दे रहे कि किस प्रकार हमारी भी अवस्था उसी प्रकार है उस बकरे और बकरी की तरह। तो वैसे यहां पर उस कहानी को बताते हुए यहां पर इस कहानी तक पहुंचे कि किस प्रकार जो बकरी कुएं में गिर चुकी थी उस बकरी को एक उनका जो प्रियतम बकरा ने उनको बाहर निकाला। तो हमने श्रवण किए पिछले क्लासों में कि किस प्रकार उन्होंने बाजू से अपने सिंह के द्वारा खुदाई कर उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो ये जो बकरा जो था ये बड़ा ही आकर्षणवान था। तो ये बकरी और ये बकरे के प्रति उनका जो मिलन था वो मिलन होने के बाद में अन्य बकरी भी उन्होंने भी ये विचार रखा कि हमारा भी इस बकरे के साथ मिलन होना चाहिए। और जब अन्य बकरियों ने भी अपने प्रस्ताव को जब रखे तो उस बकरे ने उस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। तो तब यहां पर उस बकरी को बड़ा क्रोध आया। उस बकरी को लगा कि इन्होंने मुझसे अपराध किया। तो उन्हें लगा कि ये जो बकरा जो है बड़ा ही कामुक है, इन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ खेला और ऐसे उन्होंने उनके प्रति वैर रखते हुए ये विचार किया कि ये मेरा दुश्मन है। तो जब भी व्यक्ति जब विषय वस्तुओं में या विषय भोग में जब लगता है तो पूरी तरह वो अंधा हो जाता है, वो भूल जाता है कि उनका वास्तविक मित्र कौन है और शत्रु कौन है, और वो इसमें भेद रखने में या इसके अंदर वो ठीक से नहीं देख पाता। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ व्यक्ति आंखें होने के बाद भी नहीं देख पाते, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, लेकिन वही व्यक्ति देख सकता है जो विषयों से रहित है। तो जब भी विषय व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में जब विषय भोग में जब बाधा आती है तो वो सोचता है कि ये मेरा दुश्मन है, या कोई भी उसके विषय वस्तुओं में जब रुकावट रखता है तब वो उसके प्रति वैर रखता है या द्वेष उत्पन्न करता है। जैसे हम देखते हैं कि सातवें छठे स्कंद में जहां पर इंद्र की जहां कथा आती है कि इंद्र जिन्होंने उनके सारी जो राजपाट को असुरों ने जब घेर कर उनका सब स्वर्ग के आसन को जब छीन लिया, तब वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेहतर है कि तुम विश्वरूप के पास जाओ, विश्वरूप तुम्हें सहयोग करेंगे। तो सीधे आते ही उन्होंने विश्वरूप को आलिंगन करते हुए अपने मित्र के रूप में घोषणा किया कि आप मेरे मित्र हो, और इस तरह उनको आलिंगन करते हुए उनको मित्र बनाकर उन्होंने कहा कि हमारे देवताओं के लिए कुछ यज्ञ करो ताकि हमें बल प्राप्त हो, जिस बल से हम असुरों का वध करें या असुरों को हम यहां से बाहर निकालें। तो उन्होंने विश्वरूप को मित्र बनाया, और विश्वरूप ने उसी समय अपने दो मुख से देवताओं को यज्ञ करते थे, एक मुख से असुरों को करते थे, क्योंकि विश्वरूप की जो माँ जो थी रचना वो असुरों के दल से थी और पिता जो था त्वष्टा वो देवताओं के साथ देवताओं के दल से था। इसीलिए उनका कुछ झुकाव असुरों के प्रति भी होने के कारण उन्होंने असुरों को भी एक मुख से असुरों के लिए भी यज्ञ हवन शुरू किए। और ये जब इंद्र ने इस बात को जब पता लगा इंद्र को कि ये इस प्रकार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने तलवार लेकर तीनों मस्तक को काट दिया। तो कुछ ही क्षण में इंद्र, कुछ क्षण पहले इंद्र के लिए वो मित्र था, अब कुछ क्षण के बाद इंद्र के लिए वो शत्रु बन गया वही विश्वरूप। क्यों? क्योंकि वह जान लिए कि यही जो विश्वरूप है ये मेरे लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, या इतना ही नहीं यहां तक कि मेरे स्वर्ग के आसन को छीन रहा है, यानी कि मेरे विषय भोग में बाधा दे रहा है। तो मेरे विषय भोग में बाधा दे रहा है यानी कि ये मेरा शत्रु बन गया है। तो वैसे स्वयं बड़े बड़े देवताओं के स्तर पर इंद्र तक उनके उनकी भी ऐसे विचार है। जैसे हम जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विषय भोग के संपर्क में आते हैं वैसे ही व्यक्ति जान नहीं पाता कि उनका मित्र कौन है शत्रु कौन है। इस भौतिक संसार में मित्र और शत्रु की जो तालमेल है वो केवल यहां तक ही है, जब तक तुम मुझे कुछ प्रॉफिट दोगे तो तुम मेरे मित्र हो, और जैसे ही तुम मेरे रास्ते में बाधा दे रहे हो तो तुम मेरे शत्रु हैं। इस भौतिक संसार का मित्र इसी प्रकार है मित्रता। जैसे एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है कि एक बार तीन मित्र थे। अब ये तीनों के मित्र, ये तीन मित्र के आपस में मित्रता कैसी थी इसको हम जान सकते हैं। ये तीनों मित्र बड़े ही आपस में घुल मिलते थे, मगर एक समय इन्होंने खीर बनाया और खीर बहुत ही थोड़ा रह गया, तो थोड़ा सा ही खीर बच गया। तो अब चर्चा यह हुआ कि तीनों में से खीर खाएगा कौन। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे फ्रिज में रख देंगे, दूसरे दिन सुबह उठ के देखेंगे, जिस जो रात को अच्छा सपना देखा है उसको दूसरे दिन खीर खिलाएंगे। तो बोला ठीक है। तो तीनों मित्र सो गए, सुबह उठकर देखा तो कटोरी खाली है। तो बोला अरे ये कैसे हो गया। फिर कहाँ चला गया? तीनों जन आपस में चर्चा किए तो एक ने कहा आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो बोला आपने आपने क्यों खाया? तो बोले ठीक है पहले ये तो बताओ कि वो का सपना क्या है। तो इन्होंने कहा, पहला व्यक्ति ने कहा, मेरा सपना इतना अच्छा था, इस खीर के खाने का एकमात्र हक मेरा था, क्योंकि मेरे सपने में ब्रह्मा जी आए थे और मुझे ब्रह्मलोक को लेकर गए और मैं ब्रह्मलोक में विचरण करके आया। तो जिस दूसरे ने कहा मेरे सपने में तो शिव जी आए, अच्छा, और मुझे शिवलोक लेकर गए और शिव के तरफ तरह के नजारे दिखाए। तो तीसरे को पूछा तुमने क्या किया? तो इन्होंने कहा मेरे सपने में हनुमान आए और वो भी गदा लेकर और बोला चल खीर खा। तो वह तो बड़ा घबरा गया, तो घबरा कर वह खीर खा गया। तो बाकी दो दोनों जन कहने लगे अरे मूर्ख मुझे आकर नहीं बताया खीर खाया तो। तो बोले मैं आया था आप लोग को बताने, एक क्या था ब्रह्मलोक दूसरा क्या शिव लोग, मैं क्या कर। जय श्री राधा की सारी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो भौतिक संसार की जो मित्रता है वो इसी प्रकार है, जब तक किसी को स्वार्थ मिल रहा है तब तक वो उसका मित्र है और जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म हो गया तो उनकी मित्रता की जो एग्रीमेंट है वही खत्म। तो ये जो लाभ के ऊपर मित्रता का एग्रीमेंट बनता है, तो इस तरह जब व्यक्ति विषयों में जो भौतिकवादी जो विषय भोग में जब लगते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता कि वास्तविक मित्र कौन है शत्रु कौन है। और यहां पर इस बकरे की जो स्थिति थी, बकरी की, ये बकरी की इसी प्रकार स्थिति की थी कि वो सोचने लगी ये मेरा प्रियतम नहीं है, ये मेरा बल्कि दुश्मन है। और ऐसे सोचकर उन्होंने उनको शत्रु के रूप में देखने लगी, क्योंकि दृष्टि होने के बाद भी वो नहीं देख पा रही थी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में जहां पर पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में जब दुर्योधन ने जब पूरी सेनाओं का जब व्यूह रचना किया, तो व्यूह रचना करने के बाद दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और तरह तरह के शब्द कहने लगे, तो उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं दुर्योधन जो था अंधे का पुत्र अंधा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास दृष्टि होने के बाद भी दुर्योधन कुछ नहीं देख पा रहा था। दुर्योधन सबको देख रहा था, अत्र सूर महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधान विराट द्रुपद महारथ, सबका नाम पुकारा, लेकिन उस योद्धा में जो मुख्य जो श्रोत्र है सारे बल के जो श्रोत्र है कृष्ण, उनका उन्होंने दर्शन नहीं किया। यह दुर्योधन की दृष्टि थी, दृष्टि होने के बाद भी नहीं देख पा रहे थे, पश्यन्ति न पश्यति। तो वैसी अवस्था में जब व्यक्ति जब अभिमान का जब मत जब चढ़ जाता है सर पर तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र को यह उपदेश देते हैं, माम ऐश्वर्य श्री मदांतो दंड पानी न पश्यति। जब गोवर्धन की जब लीला जब घट गई तब उसके पश्चात इंद्र आए थे सुरभि गाय को लेकर क्षमा याचना करने। तब उस समय भगवान कृष्ण इंद्र को कहने लगे कि तुम्हारे अंदर अभिमान का जो प्याला था तुम्हारे सर पर चढ़ चुका था और इस अभिमान के नशे में तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं और ये तुम्हारी शिक्षा है, और ये न जानते हुए तुम ये सोचने लगे कि सारे ब्रजवासी मुझ पर अपराध कर रहे हैं। और वैसे जब व्यक्ति ऐश्वर्य का जब मत जब चढ़ जाता है तब उसे पता नहीं लगता कि वास्तविक सही क्या है गलत क्या है। जैसे जो कैदी जो होता है जब उसे अगर फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी की सजा देने के एक दिन पहले, कल उसको अगर मृत्यु दंड दे रहे हैं तो एक दिन पहले उनको भरपूर जो चाहिए वो खिलाया जाता है, 56 भोग खिलाया जाता है उस कैदी को। और ये कैदी कल ये फांसी में सूली पे चढ़ने वाला है और एक दिन पहले बड़े स्वाद में वो खाता है। तो वो उसे ये नहीं पता लग रहा है कि कल उसकी मृत्यु है। तो वैसे जो व्यक्ति जब उसके अंदर जब ये इस प्रकार का जब मद चढ़ जाता है तब वो व्यक्ति देख नहीं पाता है कि वास्तविक सही क्या है गलत क्या है। इसी प्रकार उद्धव जी भगवान कृष्ण को उद्धव गीत में बताते हैं, उद्धव जी ये प्रश्न करते हैं कृष्ण से, विदंती मृत्य प्रायेण विषयान पदम आपदान तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवट। वो तीन पशुओं का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार इनके समक्ष इनको अपने सामने इनकी अवस्था दिखाई देने के बाद भी ये देख नहीं पाते हैं इनकी ऐसी क्या स्थिति है। तो ये तीन पशुओं का उदाहरण देते हैं। तो क्या क्या, स्व, खरा और वट, अज। तो स्व यानी कि कुत्ता, खर यानी कि गधा, अज यानी कि बकरी, ये तीन उदाहरण देते हैं। और यहां पर भी हमें बकरी का ही उदाहरण दिख रहा है। तो उसके ही तात्पर्य में हृदयानंद स्वामी महाराज वो बताते हैं कि इसका वास्तविक ये तीन लोगों की क्या अवस्था है। तो बताते उद्धव जी, वदंती मृत्या प्रायेण विषया पदमा आपदान। इन लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में जब व्यक्ति विषयों में जब लगता है तो उसके सामने केवल दुर्घटना दिखाई देती है, लेकिन दुर्घटना दिखाई देने के बाद भी पदमा आपदान, उसके सामने संकट दिख रहा है फिर भी वो उसे नहीं देख पाता। कैसे नहीं देख पाता? तो पहला उदाहरण देते स्व, यानी उसकी स्थिति किस प्रकार, उस कुत्ते के समान। कुत्ता जो होता है ये ऐसा प्राणी है कि ये हर बार ये भूल जाता है। जैसे कुत्ते को अगर कुछ बिस्किट दिखा दिया जाए तो कुत्ता वो बिस्किट खाने के लिए आता है, और बिस्किट हटाकर जोर से एक लकड़ी उसके मुंह में मारो तो मार खाएगा तो दूर चला जाएगा। फिर से लकड़ी दिखाओ तो फिर से आएगा कुत्ता पूछ हिला कर, फिर से जोर से लकड़ी मारो फिर दूर चला जाएगा। तीसरी बार फिर बिस्किट दिखाओ, तीसरी बार वो फिर पूछ हिला के आएगा। जितने बार मारोगे उतने बार वो दूर तो जाएगा लेकिन बिस्किट दिखाने के समय वापस आएगा। क्योंकि जब जब कुत्ता मार खाता है तो उसे दर्द होता है तो दूर चला जाता है, लेकिन जैसे ही बिस्किट का टुकड़ा देखता है तो वो मार को भूल जाता है। तो कुत्ता ये भूल जाता है कि ये जो पहला मुझे मार मिला था वो स्थिति को भूल जाने के कारण कुत्ता वापस से आता है। और वैसे ही जीव की वैसी स्थिति है कि जीव, बद जीव की ऐसी स्थिति है कि जब वो विषयों में जब लगता है तब माया के द्वारा उसे चाटा तो मिलता है, लेकिन चाटा मिलने के बाद भी जब माया के द्वारा जब प्रलोभन दिया जाता है तो वो उस चाटे को भूल जाता है। और इस तरह जीव बारंबार मार खाता रहता है। तो वैसे लोगों की वैसी स्थिति है। फिर दूसरा उदाहरण देते गधे की। अब दूसरा गधे का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि ये गधे की किस प्रकार स्थिति है। गधा भी एक ऐसी पशु है जो अपनी विवेक बुद्धि को भूल जाता है या उसे समझदारी नहीं है। अगर गधे एक एक गधे को कुछ थोड़ा सा घास दे दिया जाए दिन भर काम कराए तो करता रहता है। एक बार गधे ने यह सोचा कि बस अब मैं स्ट्राइक लूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, और गधा एक ही जगह खड़ा रहा। धोबी वाले ने उसके पीठ में कपड़े का ढेर डाल दिया फिर भी वो नहीं हिल रहा है, एक ही जगह पे केवल खड़ा है। खूब डंडे से पीटा फिर भी नहीं हिला। देखो गधा कितना जिद में अड़ा हुआ है। गधा सोच रहा है इतने लोगों का कपड़ा उठा के लेके जाता हूँ, इतने कपड़े का धो रहा हूँ, लेकिन एक कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। और वैसे गधे की स्थिति है, तो मालिक देखता है तो धोबी वाला क्या सोचता है कि अब इससे काम करवाना होगा कैसे, तो वही डंडे के वो एक गाजर लगा देता है और उसी डंडे को गधे के गर्दन में यूं बांध देता है, तो गाजर आगे लटक रहा है। तो गधा सोचता है दो कदम चलूंगा तो गाजर मेरा है, तो गधा दो कदम चलता है गाजर भी दो कदम चलता है, गधा और चलता है गाजर और चलता है, और यह समझ में नहीं आ रहा है कि गधा को कि गाजर क्यों नहीं मिल रहा है। गाजर गधा यह सोचता है केवल दो कदम का फासला है। ठीक इसी तरह जीव की ऐसी स्थिति है कि बद जीव यह सोचता है कि आज मुझे सुख नहीं मिला, कल मुझे मिल जाएगा, कल सुख नहीं मिला लेकिन परसों डेफिनेटली मिलने वाला है। और जीव केवल जी रहे हैं तो केवल सुख की अभिलाषाओं में जी रहे, सुख की आशाओं में जी रहे और अपने जीवन को बिता रहे। और फिर तीसरा उदाहरण देते हैं बकरे की। अजर ये बकरा ऐसा पशु है, इसे जब कसाई खाने लेकर जाते हैं तो बारी बारी से सारे पशुओं को लिया जाता है उसको उसका हलाल करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक बकरी का वहां पर कसाई खाने में केवल बलि चढ़ता है, लेकिन जो बचे कुचे जो बकरी है वो सोचता है कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। बचा कुचा बकरी सोचता है कि यहां पर मैं हमेशा के लिए रहूंगा, और वो जो बच्चे कुचे बकरी अंदर ही पिंजरे के अंदर आपस में झगड़ा करता है, ये मेरा जगह है वो तुम्हारा जगह है, लेकिन उसे पता नहीं सामने ही बलिदान चढ़ रहा है। और इस प्रकार वो जो बकरी देखने के बाद भी नहीं देख पाता। तो वैसे ही उदाहरण यहां पर ययाति महाराज दे रहे कि मैं भी उसी बकरी के समान हूं, मैं भी कई बार माया के द्वारा मुझे चाटा मिल चुका है लेकिन मैं फिर भी नहीं सुधरा। इस प्रकार ययाति महाराज अपने साक्षात्कार को व्यक्त करते हैं कि मुझे शुक्राचार्य के द्वारा भी दंड मिला फिर भी मैं नहीं, समझदारी आई मुझ पर, और वैसे मुझे कई तरह से माया के द्वारा धक्का मिलने के बाद अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, और इसलिए उन्होंने अपने आप को बकरे के साथ तुलना करते हुए उन्होंने इस इतिहास को बताया। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये विषय जो है, विषय वस्तु जो है, ये किस प्रकार जहरीला है। तो विषय भोग का वास्तविक सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू पॉइजन। केवल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, विभिन्न प्रकार के विषय भोग केवल अलग अलग फ्लेवर में है, वो भी पॉइजन ही है, पॉइजन इन डिफरेंट फ्लेवर। तो वैसे यहां पर ययाति महाराज अपने साक्षात्कार को व्यक्त करते हुए पछतावा कर रहे हैं कि किस प्रकार मैं दुखों को भोग रहा हूं, ऐसी कैसी अवस्था में मैं गिर पड़ा कि यहां पर केवल मुझे दुख ही प्राप्त हो रहा है। राजा बद्री हरि बहुत सुंदर बताते हैं विषयों के प्रति, बताते हैं कि भोगाना भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, तपोना याता वयमेव तप्त, कालोना याता वयमेव याता, तृष्णाना जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो बताते हैं कि भोगाना भुक्त्वा, कोई भी व्यक्ति विषयों को नहीं भोग सकता, क्योंकि प्रकृति होने के कारण ये प्रकृति जीव कभी विषयों को भोग ही नहीं सकता, लेकिन विषय वस्तु से भोग लेता है। जैसे कुछ कोई सोचेगा कि अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूं या सिगरेट पी रहा हूं, सिगरेट वो क्या पी रहा है, सिगरेट ही उसको पी रहा है। तो हर इसी प्रकार हर विषय वस्तु जो है वो उसी को ही भोगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब लेक्चर देने के बाद कुछ लोग प्रसाद खा रहे थे, तो एक सेठ जी भी था, वो भी बैठा था, प्रसाद खा रहा था। तो प्रसाद पे खाया जा रहा था और मालपुआ पे मालपुआ खाया जा रहा था। तो सरस्वती ठाकुर कहने लगे, मालपुआ आप खा रहे हो क्या, मालपुआ तुम्हें खा रहा है, क्या हो रहा है? तो व्यक्ति विषयों को भोग रहा है, ये जो उसका विचार ही गलत है। वैमेव भुक्त्वा तपो न याता वैमेव तप्ता। तो कोई सोचेगा कि मैं तपस्या को नहीं लूंगा, तपस्या बड़ा ही कठिन है, ये मुझसे नहीं होता, ये तपस्या की अग्नि बड़ी ही जटिल है, ये मुझे होगा नहीं। जो ऐसा सोचता है वो स्वयं ही तपस्या की अग्नि में जल जाता है। तो भले ही कोई व्यक्ति तपस्या नहीं ग्रहण करे, लेकिन माया के द्वारा उसको तप में तो गिरना पड़ेगा ही। जैसे मैं शुरू में ब्रह्मचारी बनने के पहले कमलोचन प्रभु के साथ वृंदावन गया था, तो वहां पर एक सुंदर एक घटना घटी जिससे कुछ विचार हुआ कि हाँ वाकई ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तो वहां पर हुआ यूं कि दो ब्रह्मचारी उन लोग सड़क पार कर रहे थे वृंदावन के यहाँ। तब ब्रह्मचारी मतलब तो है, पता होगा सब, शेव हेड एकदम चकाचक, और वो पार कर रहे हैं। तब उसी समय एक अर्मडा गाड़ी आई, तुरंत ब्रेक मारा और उन्होंने कहा एक टपलू दिखता नहीं है क्या? तो वो तो सुने, लेकिन उधर और एक जन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो भी इस प्रकार टकलू ही था तो उसको गुस्सा आ गया और वो कहने लगे तुम टकलू, तुम्हारा खानदान टकलू, गाड़ी में जितने बैठे सब टकलू, और केवल टकलू पे टकलू गाली दे रहे। और ये कह रहा भाई साहब आपको नहीं, उन लोग को आपको नहीं वगैरह, तो चुप ही नहीं हो रहा है। और ये दो ब्रह्मचारी बड़ा मस्त मुस्कान देते हुए वहां से निकल गए। तो वहां से एक शिक्षा ये प्राप्त हुई कि ये तो ब्रह्मचारी जिन्होंने स्व इच्छा से अपना बल दे दिया है, कोई रोक तो नहीं, भगवान के अपनी स्व इच्छा से भगवान को अर्पण कर दिया बाल। लेकिन ये जो दूसरा जो टकलू था, इसने अपने सारे बाल को एक एक गिन के रखा था, लेकिन माया का झोंका ऐसा लगा कि सब उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। और जब इनको टकलू बोला तो बड़ा क्रोध आया। तो अगर कोई स्व इच्छा से तपस्या ग्रहण नहीं करता है तो माया उसको जबरदस्ती करवाएगी। जैसे मैं अपनी माँ को हमेशा कहता था चाय पूरी बला है, चाय नहीं पीना चाहिए, कृष्ण के लिए छोड़ दो, लेकिन माँ सुनती नहीं थी शुरू में। फिर मैं ब्रह्मचारी बनने के बाद 2 साल के बाद माँ आकर कहने लगी मैं चाय छोड़ दी। उन्होंने बोला अरे वाह कृष्ण से प्रेम बढ़ गया है। तो बोले नहीं, डॉक्टर ने कहा है डायबिटीज हुआ है इसलिए चाय बंद करो। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं तपस्या नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन उसे तो माया करवाएगी। खैर अभी तो अच्छा सोला वाला कर रही है। तो वैसे माया उसको तपस्या में लगाएगी। इसलिए स्व इच्छा से अर्पण करना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है उस विषयों को। तो स्व इच्छा से उसे तपस्या को ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे कहते कालो न याता वैमेव याता। तो कोई कहेगा क्या कर रहे हो? मैं टाइम पास कर रहा हूं। टाइम क्या पास कर रहे हो? टाइम ही तुम्हें पास कर देगा। तो कोई टाइम पास नहीं कर सकता। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तो कोई सोचता है कि मेरी जो तृष्णा है इसको मैं पूरी तरह खत्म कर दूंगा, लेकिन उसकी तृष्णा कभी बुढ़ापे को ग्रहण नहीं करती, लेकिन वो स्वयं ही बूढ़ा हो जाता है। लेकिन तृष्णा युवा के युवा ही रहता है। तो इसलिए बताया जाता है कि 90 साल का बूढ़ा लेकिन हृदय 18 साल के जैसा, और सारी इच्छाएं हृदय में है लेकिन कोई इंद्रिय साथ नहीं देता, इसलिए कहते हैं ना बूढ़ा सटिया गया है, बौखला जाता है। तो वैसी अवस्था में व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, लेकिन तृष्णा जो है कभी बूढ़ी नहीं होती है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति, अगर वो प्यासा व्यक्ति समुन्द्र में गिर पड़ा है, खूब मेहनत कर रहा वहां से बाहर निकलने का, और हाथ पैर मारते मारते वो थक चुका, प्यास लगा है, तो वो पानी पी रहा है कहाँ का, वही समुन्द्र का। तो समुन्द्र का पानी पीता है, अभी समुन्द्र का पानी क्या है, खारा है। अब प्यासे व्यक्ति को खारा पानी पिलाया जाए तो प्यास क्या होती है, दुगनी बढ़ जाती है। वैसे ही जीव सोचता है कि मैं अपने प्यास को मिटा दूंगा, और वो सोचकर जो जितना ही विषयों में लगता है उतना ही उसकी जो प्यास की तृष्णा की जो अग्नि है वो बढ़ती जाती है, और इस प्रकार वो अंततः गत्वा भोकला जाता है। और यहाँ पर ययाति महाराज इस प्रकार परेशान होते हुए उन्होंने अपने हृदय को व्यक्त किया। वो बता रहे हैं कि कैसे मैं कितनी बुरी तरह से परेशान हो चुका हूं इस विषयों में। और इसलिए कहा गया है विषय इंद्रिया संयोगा जत्त अग्रे अमृतोपमं परिणाम विषमिव तद राजसम सुखम। विषय इंद्रिया संयोगा, विषय इंद्रियों के संपर्क में जब विषय जब जुड़ता है तो वो शुरू में अमृत के समान लगता है। यत्तत अग्रे अमृतोपमम, शुरू में कैसे लगता है, अमृत लगता है, लेकिन परिणामे विषमिव, लेकिन अंततः गत्वा उसे केवल परिणाम क्या प्राप्त होता है, केवल विष के समान। और वह जो सुख है वो है राजसिक सुख। इसलिए यहां पर ययाति महाराज अपने आत्म साक्षात्कार को व्यक्त कर रहे हैं। वो बता रहे कि कैसे मैं पूरी तरह इस विषयों के जंजाल में पड़ने के कारण मैं किस प्रकार दुखों को भोग रहा हूं। कौस्तु संहिता में बहुत सुंदर एक उदाहरण है, उसमें बताया जाता है कि एक बार एक राजा था, वो राजा हमेशा एक वेश्या के पास जाया करता था। तो समय समय पर उस वेश्या के पास जाया करता था। एक समय ऐसे हुआ कि राजा को जाना था दूसरे जगह पर युद्ध के लिए, तो राजा ने उस वेश्या को कहा कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं जा रहा हूं युद्ध के लिए। तो वहां से वो निकल पड़ा। तो यहां पर ये मंत्री जो था राजा का, उसने मौका देखा और उसने कि चलो मैं जाता हूं। तो मंत्री गया उस वेश्या से मिलने के लिए। तब उसी समय मंत्री जैसे ही उनसे मिलने के लिए गए तो वहां पर आधे ही रास्ते में राजा वापस लौट आया किसी कारणवश। तो उन्होंने भी आके दरवाजा खटखटाया। तो दरवाजा खटखटाया तो वैश्या पूछी कौन हो तुम, बोले मैं राजा स्वयं। अब मंत्री तो घबरा गया। अब मंत्री सोचा अगर राजा ने मुझे गलती से यहां देख लिया तो मेरी तो नौकरी तो दूर की बात है, मुझे तो जान से हाथ धो देना पड़ेगा। तो क्या करे, कुछ छुपने का जगह बताइए। अब वहां पर वो वैश्या का कोई बड़ा घर भी नहीं था, छोटा सा घर था। तो वहां पर एक जगह था छुपने का जहां पर मल त्यागते हैं, और पुराने जमाने में जो गड्ढा बनाकर मल त्यागा जाता है। तो ये वैश्या कहने लगी यहां पर तुम्हें छुपने का जगह है। तो मंत्री बोले यहां पे, बोला हाँ यही, और कोई जगह नहीं। तो मंत्री बिना आगे पीछे देख के कूद गया। अब छुपना है, राजा से बचना है। तो राजा अंदर आया तो राजा काफी समय तक वहीं था। ये सोच रहा था राजा जा ही नहीं रहा, और ये बेचारा वहां पर परेशान हो गया, बदबू मार मार कर इसकी पूरी चेतना की पूरी तरह खराब हो गई। ये सोचने लगा अरे मैं कितना भागा हूं, मैं आया था इस वेश्या का संग करने, और वास्तविकता में भगवान मुझे वास्तविक असलियत संगीत गा रहा है। ये जो मल है किसका, ये वैश्या का ही है। और मैं ऐसे केवल जो शरीर जो बना हुआ है मल मूत्र से, वैसे शरीर के संगति को मैं प्राप्त करने के लिए लालायित हूं, और ऐसे ही पुनर्मुझे जन्म नहीं लेना, वापस मां के गर्भ में मुझे 9 वर्ष तक उस मल मूत्र में नहीं पड़ना है। और ऐसे उन्होंने निर्णय ले लिया और दूसरे दिन सुबह वही मंत्री रात पाठ सब छोड़कर संन्यास ले लिया, साक्षात्कार हो गया। तो वैसे उनके अंदर वैसी भावना जगी कि ये जो विषय वस्तु जो है वह अंततः गत्वा उसे केवल कष्ट और दुख प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार यहां पर ययाति महाराज वो अपने दुखों को केवल व्यक्त नहीं कर रहे, केवल दुख व्यक्त करना ही सुधारनीय है, क्योंकि विषय भोग में दुख तो प्राप्त होगा लेकिन दुख के साथ पछतावा भी जो है वो महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति के जीवन में पछतावा होता है तब व्यक्ति अपने आप के जीवन में सुधार लाता है। जैसे दक्ष प्रजापति के, उन्होंने जब अपना 10,000 पुत्र उत्पन्न किए तो नारद मुनि ने सबको संन्यास दंडा दे दिया, तो ये सुनते ही बड़ा क्रोधित हो गया। फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर 1,000 पुत्र को उत्पन्न किए, 1,000 उत्पन्न किए तो उनको भी संन्यास दे दिया, उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। अब किसी का एक पुत्र ब्रह्मचारी बनता है तो क्या माता पिताओं के हृदय में गुजरती है ना, वो तो वही जान सकते हैं। यहाँ पर दक्ष प्रजापति का एक तो पुत्र नहीं, पूरा 11,000 एक साथ पूरा लॉट में सब ब्रह्मचारी, अब तो हड़बड़ा गए। तो नारद मुनि सोचने लगे अब बेचारे दक्ष प्रजापति अभी दुखी रहेंगे, शायद उसको मैं शिक्षा देकर आऊंगा। दुखी तो थे, और वहां पर नारद मुनि ये सोचे कि दक्ष प्रजापति बड़े पटु है संतान उत्पन्न करने में, लेकिन मैं सबको उद्धार करने में पटु हूं। और वहां पर नारद मुनि आए थे दक्ष प्रजापति को, सोचे कि इनको ही मैं उद्धार कर दूंगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, और ऐसे सोचकर उनका ही उद्धार करने के लिए आए। लेकिन दक्ष प्रजापति सीधे बरस पड़े, तुम लोग सन्यासी को कुछ काम धंधा नहीं है, केवल भगवा कपड़ा पहन के इधर उधर भटकते रहते हो, अरे सीखना है तो हम गृहस्थियों से सीखो कि भक्ति क्या होता है। घर की जवाबदारी कभी ली है क्या? कभी कभी हमें भी लोग देखकर बोलते हैं बेचारा अपना करियर बना नहीं पाया तो इसमें घुस गया। तो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं अरे शायद किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है तो इसलिए इसमें आग घुस गया, तो लोग समझ नहीं पाते। और इसी प्रकार दक्ष प्रजापति की दृष्टि थी, तो दक्ष प्रजापति ऐसे कहने लगे तो क्रोध उनके अंदर दुख था लेकिन पछतावा नहीं था, यहां पर पछतावे की कमी थी। जब दुख होता है तो साथ में पछतावा भी होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। और यहां पर देखा जाता है कि किस प्रकार ययाति महाराज के जीवन में दुख के साथ साथ में पछतावा होने के कारण ययाति महाराज के जीवन में सुधार हुआ। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है जो कि सूरदास का। सूरदास जो थे ये बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति था, बचपन में अपने पिता के आज्ञाकारी में वो बहुत ही अच्छी तरह अपना कारोबार को संभाल रहे थे। उनका विवाह भी हो गया बड़े अच्छी तरह से, और बड़े समाज में एक जमींदार के रूप में वो जाने जाते थे, सब उनको समी मारते थे। एक समय वो जब सूरदास जब निकले अपने रथ में, तब उस समय कुछ उनके मित्र मिल गए जो केवल लोफर थे। तो उन लोग बोले चलो हम लोग आज साथ में जाते घूमने, तो बोले नहीं नहीं, बोले चलो चलो चलो, तो जबरदस्ती करके उनको लेकर गए। और लेकर कहाँ गए, चिंतामणि के घर में, वैश्या के घर पर। और वहां पर तो लेकर गए, तब उन्होंने देखा ये तो वैश्या का स्थान है, यहाँ पर कैसे ला दिए। तो भी वो भक्ति में हमेशा लगे रहते थे, श्लोक वगैरह बहुत पढ़ते थे। तो इन्होंने मन ही मन में भगवान के स्तुति शुरू कर दिए, देखना बंद कर दिया, लेकिन क्या करें, कान तो खुला था। तो वे उस चिंतामणि के मुख से केवल गीत सुन रहे थे, तो बड़ा फिर भी अपने कानों को बंद करने का प्रयास कर रहे थे। तब चिंतामणि पूछने लगी अन्यों को कि ये ऐसा क्यों करता है, आप क्यों छुपा रहा है। तो बाकी लोग ने कहा ये तो बड़ा भक्त है, इसलिए बड़ा शरीफ है। तब इन्होंने ये समझ के चिंतामणि की, अच्छा ये भक्त है तो चलो मैं कृष्ण की स्तुति गाती हूँ। तो उन्होंने इतना मधुर आवाज से कृष्ण की स्तुति गाना शुरू किया कि इन्होंने कान वगैरह खोलकर फिर सुनने लग गए, तो बड़ा अच्छा लगा। और अंत में वो सुनने के बाद वहां से निकल पड़े। अब जब सूरदास जब निकले वहां से अपने मित्रों के साथ वापस आए घर पर, लेकिन वही चिंतन था कि कितना सुंदर ध्वनि था। तो उन्होंने और सारे किताब लिए और सारे श्लोकों का बंडल लिया और फिर उनके दूसरे दिन वापस उनके पास गए, बोले कि ये भी गा के सुनाओ तो कैसे गाते। और ऐसे उनके साथ उनका आदान प्रदान शुरू हो गया, और जिसमें सूरदास जो थे उनके चक्कर में फंस गए, जो कि उनको बिल्वा मंगल ठाकुर के रूप में जाने जाते हैं। तो जब वो उनके पूरी तरह उनके चक्कर में फंस गए, तब हुआ यूं कि वो दिन रात केवल एक ही विचार लगा रहता था कि कब मैं चिंतामणि के पास जाऊं। और उनकी पत्नी को कहते थे कि मैं शहर जाकर आता हूं, कुछ काम बाकी है, लेकिन बताते नहीं थे, काफी पैसे लेकर जाते थे। और हुआ यूं कि एक समय की बात थी कि उनके जो पिता थे वो गुजर गए, और पिता गुजर जाने के कारण पिता का अंतिम संस्कार वगैरह हो गया। कुछ 12वें दिन कुछ क्रिया करना था, लेकिन उस दिन उनको जाने की बड़ी रत थी। तो कहने लगे मैं जाऊंगा, तो पत्नी ने लगी नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे लाश के ऊपर से चढ़कर जाओ। तो थोड़ा रुक गए, और जैसे ही उनकी पत्नी का ध्यान हटा ये निकल पड़े। और बड़ी जोर से वर्षा गिर रही थी, तो इन्होंने देखा कि बड़ा तूफान जैसा लहरें पर पानी बरस रही है, तो उसे उस नदी को पार करना असंभव जैसा था। तो उन्होंने देखा एक लकड़ी वो बहता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है, तो उन्होंने उसी को पकड़कर पार कर दिया। फिर गए चिंतामणि के घर पर, दरवाजा खटखटाया, सुनाई नहीं दिया, तो वहां देखा एक रस्सी लटकी हुई है, तो उसी को चढ़कर ऊपर चढ़ गए और दरवाजा ऊपर से कोयला हटाकर उसे कूद गए अंदर। और जैसे ही अंदर कूदे तो चिंतामणि देखकर हैरान हो गई, अरे तुम कैसे आए। तब कुछ समय के बाद वर्षा थम गई, सवेरा का थोड़ा उजाला हुआ, तब उन्होंने जाकर देखा कि ये आए कैसे। तो इन्होंने कहा कि तुमने तो रस्सी लटका के रखा था मेरे लिए, तो जाकर देखा और रस्सी नहीं था, वो सर्प था। तो बिल्वा मंगल ठाकुर देख के हड़बड़ा गए, ये क्या था। फिर गए कि अच्छा वो नदी को कैसे पार किया, इतना भयंकर नदी को। तो वहां जाकर देखा, उस बोले कि एक नौका जैसा एक लकड़ी बहता हुआ आ रहा था, उस पे कपड़ा लिपटा हुआ था। तो वहां जाकर देखा, वो कपड़े को हटाया तो वो उनकी पत्नी का ही लाश था, और उन्होंने अपनी पत्नी के लाश के ऊपर आरूढ़ होकर वो आए थे। और ये जब बिल्वा मंगल ठाकुर ने देखा तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा धक्का लगा, और चिंतामणि कहने लगी इतना जितना रति तुम्हें मुझ पर है, अगर थोड़ा सा रति अगर भगवान पर हो जाए, कृष्ण पर हो जाए, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनते ही उसी दिन से सूरदास वहां से विरक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में चले गए। लेकिन आश्रम में जाने के बाद भी उनके हृदय में कुछ इच्छा छुपी हुई थी। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी सुंदर स्त्री होती थी तो उसी को देखते रहते थे। तो एक समय सुंदर स्त्री जब आई तो बिल्वा मंगल ठाकुर उनकी सुंदरता को देखने के लिए लगे भागने के लिए उनके पीछे। तो ये घबरा गई, कोई साधु मेरे पीछे लगा है। तो ये घबरा कर भागने लगी और ये उनके पीछे भाग रहे, और भागते भागते उनके घर तक पहुंचे तो पति को कहने लगी, एक कोई मेरे पीछे लगा है, आप उनको संभालिए, कोई साधु है, पता नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, और ऐसे सीधे घर के अंदर घुस गई। तब बिल्वा मंगल ठाकुर उधर आए तो उन्होंने पूछा कि अभी कोई यहाँ से कोई स्त्री गई? तो बोला हाँ गई, वो मेरी पत्नी है। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो पति देव जी मुझे आपके पत्नी का दर्शन करना है, मुझे छोड़ोगे कुछ समय के लिए? तो इन्होंने देखा कोई साधु इस प्रकार कह रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने उन पति ने जोर से आवाज सुनाई पड़ा, तो उसकी पत्नी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। तो जैसे ही ये इनके पतिदेव अंदर दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो सूरदास जो थे बिल्वा मंगल ठाकुर, उनके दोनों आंख फूट गए और आंख से रक्त बह रहा है। तो ये देखते ही इन्होंने कहने लगे अपनी पत्नी को, तुमने इस प्रकार इसके साथ क्यों इस प्रकार के वर्ताव किए? तो ये कहने लगी, मैंने नहीं, इन्होंने ही किया। बोले ऐसे कैसे? बोले ये सीधे आए और कहने लगे कि मुझे आप अपने बालों का हेयर पिन दोगे क्या? और उन्होंने मेरा हेयर पिन लेकर अपने दोनों आंख को फोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तब इन्होंने पूछा, अरे महात्मा जी, आपने इस प्रकार करतूत क्यों किए, अपने आंखों को क्यों फोड़ दिया? तो सूरदास कहने लगे, यही दो आंख जो मुझे भगवान की भक्ति में रुकावट देता है, इसलिए मैंने उस रुकावट को ही जड़ से उखाड़ दिया। अब मैं कभी कोई वस्तु ही नहीं देखूंगा तो मेरा मन भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ऐसे सूरदास जिन्होंने जिनके उनके हृदय में ऐसी निष्ठा थी कि जो ही विषय वस्तु उसके लिए रुकावट देता था तो उसी को उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट भी यही शिक्षा देते हैं कि अगर किसी का हाथ अगर उसे नरक जाने के लिए मजबूर करता है तो बेहतर है कि उसे हाथ काट दिया जाए, पूरे शरीर को बचाए नरक जाने से। और इस तरह यहां पर इस सूरदास के जीवन में ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि ठीक इसी प्रकार ययाति महाराज की भी ऐसी शिक्षा दिखाई दे रही है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में पछतावा को स्वीकारा, जिस प्रकार सूरदास ने अपने जीवन में पछतावा को ग्रहण किया। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में पछतावा को ग्रहण करता है तब व्यक्ति के जीवन में सुधार आता है। जैसे अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, लेकिन अंत में जब उनके समक्ष जब यमदूत आए तो कुछ कर नहीं पाए, और ये देखकर इतने घबराहट हो गया अजामिल को, और वो कहने लगे कि अतक के ना चतवार चारु दर्शना, अरे इतने सुंदर जो दर्शन जो चतुर्भुज वाले चार पर व्यक्ति वो कहाँ गए, मुझे उसका दर्शन करना। और इस तरह अजामिल के अंदर दुख के साथ साथ पछतावा होने के कारण उनके जीवन में बदलाव हुआ। और यहाँ पर ययाति महाराज वो भी इसी प्रकार कर रहे हैं कि वो अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसे व्यक्ति के जीवन में ये जो काम की जो इच्छाएं हैं वो कैसे उसको शिकार करती हैं, इसके विषय में शास्त्र में कुछ 10 पॉइंट बताया है। तो बताते हैं, पहला चक्षु राज। तो पहला उनका चक्षु से चक्षु मिलता है, और जब चक्षु से चक्षु मिलता है तो उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तब दूसरा इत्या आसक्ति, फिर उनके प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती है। फिर तीसरा संकल्प, तो अपने जीवन संकल्प लेता है, क्या वो योजना बनाता है तरह तरह का अपनी आसक्ति को प्राप्त करने। और कुछ योजना बनाते हुए निद्रा भंग, चौथा उसका नींद भंग होने लगता है और नींद उसे कम आने लगती है, नींद नहीं आती है। और फिर संकला, संकला यानी कि वो अब खाता पीता वो भी कम है, उसके खाने में भी उसी का चेहरा ही दिखाई देता है। और फिर छठा है विषय निवृत्ति, उसे किसी चीज में रुचि नहीं रहती है, उसे केवल एक ही रुचि रहती है कि कैसे मैं उसे प्राप्त करूं, विषय निवृत्ति। सातवां त्रपानाश, वो पूरी तरह बेशरम हो जाता है। अब उसे अगर सभी लोग देखते भी है तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। जैसे किसी के प्रति उसका अगर प्रेम हो जाता है तो उसके नाम से उसको चिढ़ाया भी जाता है तो उसे लगता है मेरी स्तुति हो रही है। और वैसे त्रपानाश मूढ़ा कर्तव्य, और उसे प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह का पाप करता है। अतृप्त, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अंततः गत्वा अभिनिवेश, वो पूरी तरह उसमें रम जाता है और इस तरह वो अपने आप को उसके शिकार, वो कामदेव के शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर जयाति महाराज जिन्होंने कामदेव के शिकार होकर उन्होंने अपने साक्षात्कार को व्यक्त किया है कि कैसे मेरा दुर्भाग्य खुल गया। इस प्रकार यहाँ पर इस बकरा बकरी की कथाओं में हमें आगे और सुनाई पड़ेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की प्रश्न लिया गया नहीं, टाइम बहुत हो गया ना। थैंक यू, हरे कृष्ण।